हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर स्कान पंजाबी बाग में प्रातः काल के श्रीमद् भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण का पांचवा स्कंद और उसका 26वां अध्याय उसके ऊपर चर्चा चल रही है। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में स्थान लीला का वर्णन है। स्थान भागवत का एक विषय है। स्थान का मतलब स्थिति और दूसरा उसका अर्थ है वैकुंठ विजय। इसका अर्थ है कि जो कुछ संसार में है वो किस में स्थित है? भगवान में स्थित है, भगवान के द्वारा स्थित है। भगवान में स्थित है, भगवान के द्वारा स्थित है। तो जो कुछ भी खगोल भूगोल पाताल आकाश जो कुछ भी है वो सब भगवान के अंदर आता है, कुछ भी भगवान से बाहर नहीं है। तो कितनी लंबाई चौड़ाई संसार की है उतना ही भगवान का विराट रूप लंबा चौड़ा है। तो असल में ये पूरा पांचवा स्कंद का पिछला आधा भाग भगवान के विराट पुरुष का वर्णन है। विराट पुरुष का मतलब धरती का गोला होता है ना, जैसे एक अंडा, ये ब्रह्मांड एक अंडा अगर है तो उसमें 14 फ्लोर्स हैं, 14 तबक हैं, 14 लोक हैं। वो सारे के सारे भगवान के विराट रूप में स्थित हैं। तो असल में ये भी भगवान के विराट रूप का ध्यान, जब नया भक्त होता है तो उसके भगवान के विराट रूप का ध्यान ऐसे करता है। तो उस भगवान के विराट रूप में जैसे सर से यहाँ ब्रह्म लोक है और तलवे में भगवान के पाताल लोक है, ऐसे मलमूत्र त्यागने का जो स्थान विराट रूप का है वो नरक आदि लोक है। तो वो भी भगवान के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब 26वें अध्याय में चर्चा चल रही है नरक आदि लोकों की। इस पूरे पांचवें स्कंद में एक ऋषभदेव भगवान के अवतार का वर्णन है, भरत महाराज के चरित्र का वर्णन है और उसके बाद पृथ्वी उसके वर्ष, फिर आकाश तारामंडल आदि उसका वर्णन है। ये सब विराट पुरुष की कितना भगवान विराट है इसको कहते हैं भगवान का स्थूल ध्यान और इससे फिर सूक्ष्म ध्यान करना पड़ता है। तो ये है असल में भगवान के ध्यान की पद्धति और ये नरक आदि लोगों का वर्णन भी उस विराट पुरुष के अंतर्गत आता है। और इसका अर्थ हमको डराना नहीं है, इसका अर्थ के ऐसे स्थान भी हैं जैसे कोई देश स्कूल कॉलेज भी बनाता है, अस्पताल बनाता है, लेकिन जेल भी बनाना पड़ता है। क्यों जेल बनाना पड़ता है? कि लोग अपराध करते हैं तो उनको सुधारने के लिए और सजा देने के लिए। तो सुधारना और सजा देना दो उसके उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे मानना चाहिए कि नरक आदि लोक ऐसे सुधारना और सजा देने के लिए विराट रूप के शरीर के अंतर्गत विराट रूप के उस जो रूप है उसके अंतर्गत कुछ स्थान है और ये सब पाताल से भी नीचे है। इन स्थानों का वर्णन पाताल से भी नीचे है, कोने में एक साइड में उसका भी वर्णन है कि नीचे पाताल लोग, उससे नीचे कोने में नरकादि लोगों का वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 28 नरकों का वर्णन किया है और फिर कहा कि और असंख्य बहुत सारे ऐसे नरक हैं जिसमें जितना पाप भारी उतना उसको उधर सजा भारी। तो ऐसे बहुत और भी नरक हैं और फिर एकदम कहेंगे कि चाहे पाप करके नरक में जाओ, चाहे शुभ काम करके स्वर्ग में जाओ, लेकिन दोनों दंड भोगने या भोग भोगने के बाद संसार में आना ही पड़ेगा। फिर ऐसे इस अध्याय का वर्णन ऐसे आगे आएगा। तो अपने को अभी कल के श्लोक में परम पूज्य प्रभुनंद सरस्वती महाराज जो श्लोक कल यहां चर्चा के विषय था उसमें था, अतिथि सत्कार न करने वाला गृहस्थी उसकी ओर घूर के देखे अथवा उसके आने से खुश न हो, असंतुष्ट हो, तो फिर एक विशेष नरक है, प्रियवर्तन ऐसे कुछ उसका नाम था, उसमें उसको भेजा जाता है, जहां गीद आदि पक्षी ऊपर से झपट के उसकी आंखें निकाल देते हैं, क्योंकि आंखों से घूरा था। तो इस वर्णन से एक सीखी थी हमारी संस्कृति ने, एक चीज सीखी थी कि हर घर में एक गेस्ट रूम बनाया जाता था। अभी भी देखो एक हमारी संस्कृति में एक ये भाग है, घर जो बनेगा कहते भाई अतिथि की जगह कहाँ है, कमरों कौन सा है, गेस्ट रूम कहाँ है, अभी है कि नहीं गेस्ट रूम। तो इस एक श्लोक ने हमारे संस्कार में, हमारे रहने के घर में एक अतिथि निवास बनाने का, गेस्ट रूम बनाने का शिक्षा दे दी। गेस्ट हाउस बनाए, गेस्ट रूम बनाए, धर्मशालाएं बनाई, इस एक श्लोक ने इतना बड़ा काम किया कि अतिथियों का सत्कार लोगों ने अपने आप हमारी संस्कृति में आ गया। अब जो भी थोड़ा सा भी संपन्न व्यक्ति है घर बनाएगा तो उसमें एक निश्चित रूप से गेस्ट रूम बनाता है, उसका नाम ही गेस्ट रूम होता है। तो ये एक श्लोक की देन है कि हमारा संस्कार इतना उत्तम कोटि का हो गया कि घर में हमने आने वाले मेहमान के सत्कार के लिए, पहले तो गांव में पहले ओताक कहा करते थे, कोठी बाहर एक उसका कहते जो आए उसको शब्द होता है ओतारा, उतरने वाला, कहीं से आया हो ऊंट से उतरेगा गाड़ी से उतरेगा तो रहेगा कहां, तो उसके लिए उस शब्द होता था ओतारा, ओताक में रहेगा, उतर के वहां रहने के लिए उसको जलपान करने के लिए व्यवस्था पूरे गांव की अलग होती थी और हर घर की अलग होती थी। तो असल में ये श्लोक हमारे को संस्कार देने के लिए है जिससे हम सभ्य व्यक्ति बन सके, सभ्यता की जो आवश्यकता है उसके अंतर्गत ये श्लोक हमारे को इतनी बड़ी महान शिक्षा दे गए हैं जिससे हमारा न जाने न पहचाने। एक मैं थोड़े दिन पहले बैक टू भागवत दर्शन, बैक टू गॉड हेड मैगजीन देख रहा था, उसमें कुछ 30 भक्त मुंबई से गए थे पंजाब में, तो एक गांव में ऐसे चले गए जाने न पहचाने। तो कीर्तन करने के बाद लोग, एक सरदार जी आया वो 50-60 साल का, उनको कहा आप अपना भोजन क्यों बना रहे हैं, आप हमारे अतिथि हैं, हमारे घर चलो, 30 आदमी को घर लेके आके आप स्कूल में जब क्यों सोएंगे, हमारे घर में सोइए। वो अपने घर में उनको रखा, सबके लिए भोजन बना के खिलाया और छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा गांव में अभी भी ये अतिथि सत्कार के लिए जाने न पहचाने कोई अचानक साधु महात्मा देखते हैं तो बहुत सम्मान है ही, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए भी ये बहुत बड़ा, इस भागवत के इस श्लोक ने भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है मेहमान नवाजी का और अतिथि सत्कार का, जो पाश्चात्य देशों में अलभ्य है। मेहमान नवाजी और कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, अतिथि सत्कार और कहीं होता ही नहीं। ये होटल आदि ये सब पाश्चात्य संस्कृति की हमको देन है, ये भारत संस्कृति की पहचान नहीं है। अतिथि देवो भव, जहां शिक्षा मिलती थी स्कूल में बच्चों को, घर जाते हो तो अतिथि देवो भव, मातर देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुजन और तुम्हारे अतिथि तुम्हारे लिए पूजनीय है, उनका सेवा सत्कार करना चाहिए, ये तो शिक्षा सबको मिलती थी। तो ये होटल आदि जो है ये पाश्चात्य संस्कृति से हमारे यहां आए हैं, भोजन आदि कभी भी गांव में होटल आदि नहीं हुआ करते थे। अभी भी गांव के पुराने गांव जितने भी हैं वहां होटल ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि गांव में किसी हरेक को भोजन मिलता है, अब ब्रज के किसी गांव में होटल ऐसे मिलेगा नहीं, अभी चाय वालों ने कहीं निकाला है तो और बात है, लेकिन अभी भी यहां दूर नहीं जाओ, ब्रज में जाओ, होटल नहीं है गांव में, बस स्टैंड के पास हो, एक आदि हो तो हो, नहीं तो सबको सब कुछ मिल जाता है। तो इससे हमको सीखना यह चाहिए कि अतिथि सत्कार, अब कल महाराज कह रहे थे कि उठ के बाहर कहना चाहिए भोजन करने से पहले, कोई भूखा तो नहीं है, तो ये अब संभव नहीं रह गया आधुनिक युग में। एक तो रहते हैं 10-15 फ्लोर पे, वहां से चिल्लाएंगे कैसे और किसी को कहे कोई भूखा है तो मेरे ख्याल में आधा पलटन बाहर आगे खड़ा हो जाएगा, ना भूखे नहीं है तो भी लोग ये लोगों ने एक प्रोफेशन बना रखा है भीख मांगना भी, तो फिर हम इस ग्रस्त आश्रम के परम धर्म को कैसे निभाएं कि एक अतिथि को तो कम से कम रोज खिलाना ही चाहिए। तो कहीं इसके ऊपर जब ऐसे हम बॉम्बे में कहा तो बोला ये संभव नहीं है प्रभु जी के नाम, हम ऊपर रहते हैं वहां से चला नहीं सकते, चला के तो आधा बॉम्बे आ जाएगा, खिलाएंगे कहां से। तो उसका उत्तर ये है कि हर गृहस्थी को, एक व्यक्ति को कम से कम खिलाने जितना भोजन, कच्चा अन्न या कुछ भी एक तरफ रख देना चाहिए, और 15 दिन महीने में जहां जरूरत होती है, जहां साधु सेवा होती है अथवा गरीबों को दिया जाता है, वहां जाके दे के आना चाहिए। ये सब गृहस्थियों को अपने घर में नियम बना लेना चाहिए भाई, अतिथि मानो हम नहीं रोज कर सकते सत्कार, तो भी एक व्यक्ति के लिए जितना आवश्यक कम से कम होता है, तो जो भी 10 किलो चावल है के 10 किलो आटा है अथवा जो भी ऐसा सामान है, वो जहां आपका मन करे कि भाई जैसे अब यहां प्रसाद रोज वितरण हो रहा है तो वहां जाके दे देना चाहिए कि भाई किसी न किसी को मुक्त तो लगेगा ना अतिथि के। ऐसे जब होता था तब किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी, अपने आप सब आश्रम चलते थे, लोगों को ये मालूम था कि ये आश्रम चल रहा है, यहां अतिथि का सत्कार हो रहा है, भोजन मिल रहा है, तो वहां सब कुछ अपने आप देके जाते थे। श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधे, श्री राधिका राधा रमन की, राधिका राधिक, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की, गौर प्रेमानंदे। तो ये छोटा सा बात है, लेकिन ये सबको जीवन में एक नेम बना लेना चाहिए कि अथवा मान जैसे अपने संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका हमको मालूम है कि यहां किस तरीके से काम चलता है, तो महीने में मानो 30 आदमी को हमको खिलाना है, तो 3 महीने में 100 आदमी हो गए, तो 3 महीने में साधुओं का सारा भोजन एक दिन का हमारी तरफ से हो गया। तो ये दूसरा तरीका उसी चीज को प्रैक्टिकल करने का है, लेकिन ऐसे करना चाहिए, एक नियम बना लेना चाहिए। ये इस श्लोक से हमको सीखना असल में ये है, डरना नहीं है कि हमारे वहां आंखें निकालेगा कोई, लेकिन ये सीखना है कि हमें किस तरीके से भगवान की, भागवत की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए। आज का श्लोक अंतिम नरक का वर्णन है, 28वां नरक है, फिर थोड़ा सा असल में आखिरी 2-3 श्लोक और बचेंगे, वो जब सुनेंगे तब इस पूरे अध्याय का उद्देश्य समझ में आएगा। इस अध्याय का उद्देश्य भगवान का ध्यान है, ये आखिरी श्लोक में लिखा होगा। तो नरक डरने के लिए नहीं है, भगवान के ध्यान के लिए है और अपने संस्कारों को सात्विक बनाने के लिए। तो आज के नरक का जो वर्णन है उसका श्लोक बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पढ़ता हूं, आप थोड़ा सुन लीजिए। यस्त इह वा आढ्य अभिमतिर अहंकृत त्रियक प्रेक्षण सर्वतो अभिविशंकि अर्थव्यय नाश चिंतया परिशुष्यमान हृदय वदनो निर्वृतिम अन्वगतो ग्रह इवारथम अभिरक्षति सचापि प्रेत्य तद उत्पादनो दनो तक कर्षण संरक्षण शमल ग्रह सुचिमोखे नरके। इसमें एक शब्द आपको आता है आढ़ धनाढ़ बोलते हैं ना, धनाढ़ी बोलते हैं, धनाढ़ी जिसके पास बहुत धन है, तो जो आर्यो शब्द है ये धन का अर्थ है। देखो तीसरा शब्द है ना, स वही ई व आर्य और अभिमान, धन का अभिमान करने वाला, आर्य अभिमान। देखा एक शब्द आर्य अभिमान दिख रहा है, इसका मतलब धन का अभिमान करने वाला, जो धन का अभिमान करता है उस व्यक्ति में पहले धन का जो अभिमान करता है उसमें कैसे अवगुण आते हैं, उसके लिए वो क्या करता है, इसलिए उसको क्या दंड भोगना पड़ता है, ये इसका अर्थ है। तो इस श्लोक का शब्द अर्थ देख लीजिए और फिर प्रभुपाद जी के द्वारा इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। यह जो व्यक्ति तो लेकिन इह इस लोक में वा अथवा आर्य अभिमति संपत्ति के कारण गर्वीला अहंकारी अहंकृत अभिमानी त्रियक्त प्रेक्षण कुटिल दृष्टि वाला सर्वतः अभिविशंकी सदैव अन्यों के द्वारा यहाँ तक के अपने से श्रेष्ठ जनों द्वारा ठगे जाने से शंकित अर्थव्यय नाश चिंतया व्यय तथा क्षति के विचार के कारण परिशुष्यमाण सूख गया है जो हृदय वदना जिसका हृदय तथा मुख निर्वृतम प्रसन्नता अनवगत न प्राप्त करके ग्रह भूत एव सदृश अर्थम संपत्ति अभिरक्षति रखवाली करता है स व च भी अपि निसंदेह प्रेत्या मर्तेन मरने के बाद उस धन का उत्पादन आय का उत्कर्षण वृद्धि संरक्षण सुरक्षा शमल ग्रह पाप कर्मों को स्वीकार करता हुआ सुचिमुख नामिक नरके नरक में निपतित गिर जाता है यत्र जहां निसंदेह वित्त ग्रहम धन हरने वाले भूतों की तरह पाप पुरुषम अत्यंत पापी मनुष्य को धर्मराज पुरुषा धर्मराज के दूत वायका इव चतुर्दर्जी की भांति सर्वतः सर्वत्र अंगेषु शरीर के अंगों पर सूत्र ही धागे के द्वारा परिवर्यंती सिलते हैं। इसका आधा पढ़ा था इसमें मैंने निपतति यत्र अह वित्त ग्रहम पाप पुरुषम धन धर्म राज पुरुषा वायका एव सर्वत्रो अंगेषु सूत्र ही परिव्ययंती। अब इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर गर्व करता है वो सदैव सोचता रहता है कि वही सबसे धनी है और कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और वो सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसके मुख तथा हृदय सूखने लगते हैं। अतः वह सदैव अति दुष्ट मनुष्य की तरह लगता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वो ये नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन क्या है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वो जो पाप कर्म करता है उससे उसे शुचिमुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां यमराज के दूत उसके शरीर सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। अब तात्पर्य को सुनते हैं। जब किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति होती है तो वो निश्चय ही घमंडी बन जाता है। इसका मतलब धन होना सबके पास जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक धन अगर है तो धन उसको क्या करेगा, घमंडी बना देगा, अहंकारी बना देगा। नशा होता है धन का। एक चार नशे बताए हैं शास्त्र ने। एक नशे को कहते हैं सुंदरता का नशा, उच्च कुल का नशा, उच्च विद्या का नशा और चौथा है धन का नशा। ये नारद गीता है, दसम स्कंद के नवें अध्याय में, दसवें अध्याय में, जहां नल कुबेर और मणिगिर्व का उदाहरण है ना, वहां नारद जी की गीता है, नारद जी के कुछ श्लोक हैं, उसमें इन चार प्रकार को नशा कहा गया है। रूप का नशा, विद्या का नशा, कुल का नशा और धन का नशा। इन चारों नशों में धन का नशा सबसे बड़ा खराब नशा है। इसको कह रहे धन मद अंधा, धन मद अंधा। धन के नशे में अंधा होता है आदमी, और उस अंधे को यहां कहा है उसकी नजर त्रियक दृष्टि, टेढ़ी नजर हो जाती है। टेढ़ी नजर का मतलब वो सही क्या है गलत क्या है ये देखना देखता नहीं, इसके लिए उसको अंधा कहते हैं। अंधे का मतलब ये है कि ये पैसा सत मार्ग में जाना है उसको नहीं दिखाई देता है। तो धन मद अंध, जब धन बहुत ज्यादा किसी के पास हो जाता है जो आवश्यकता से ज्यादा है तो वो आदमी घमंडी हो जाता है। और दूसरा लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आधुनिक सभ्यता में मनुष्य की यही स्थिति है। एक लाइन में प्रभुपाद ने बहुत बड़ी बात कही है। आजकल के दुनिया के लोग यही सोचते हैं, उसके पास इतना धन है तो मुझे मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए, उसके पास मेरे से ज्यादा क्यों है। हम जानते हैं कोई आदमी को, मतलब कई आदमी को जानते हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी ऐसा कुछ करना है, क्यों करना है ऐसा, बोला दूसरों ने ऐसा किया हमने नहीं किया, लोग कहेंगे हमारे पास ठीक नहीं है। इस केवल ईर्ष्या के कारण धन की निमाइश हो रही है, भाई मैं बड़ा हूं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये इसके शब्द ये लिखा है। तो आधुनिक युग में कौन किसकी संपत्ति ज्यादा है ये तो दिखाते हैं ना कि सबसे बड़ा धनी कौन है, वो इससे धनी है, वो इससे बड़ा धनी है। ये एक आधुनिक युग में धन की दौड़ है, बहुत बड़ी दौड़ चल रही है, वो धन किसके पास ज्यादा है उसकी है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये आधुनिक युग, इसका मतलब वैदिक युग नहीं है। अब वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं रहता था। पहला तो ब्राह्मण कुछ अर्जित करके रखता ही नहीं था। ब्राह्मण हो जिसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा पालन पोषण करेगा, वो कुछ भी इकट्ठा नहीं करता है। ब्राह्मण का वेश क्या होता था, धोती पहनता था, कुर्ता होता नहीं था पुराने ब्राह्मणों के पास, ऊपर चादर ढकता था, जेब भी नहीं होता था। तो जब जेब ही नहीं है तो रखेगा किसमें। इसलिए संस्कृति जो भारतीय है उसमें धोती जो है वो सिर्फ इसलिए पहनी जाती है कि हमको ये सिखाए कि इसमें जेब नहीं बन सकता, इसमें जेब होता ही नहीं है। धोती में जेब बनाया किसी ने आज तक, किसी ने अभी तक अल्ट्रेशन करे, साड़ी में भी जेब नहीं बनता है माता जी लोग, तो साड़ी और धोती में जेब क्यों नहीं है? ये भारतीय संस्कृति की दो स्पेशल ड्रेस है, वो हमको ये सिखाती है कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता, कुछ भी साथ रह नहीं सकता है। ये हमारी ड्रेस भी इतनी बड़ी संस्कारित है। तो ये ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को कोई कुछ दान देने के लिए आया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, ब्राह्मण अपने पास शाम को खाने के लिए कुछ है? उसने बोला है। उसने बोला किसी और को ये दान दे दो, हमारे पास रात के लिए है। दूसरे ब्राह्मण के पास गया, उसने अपनी पत्नी से पूछा, अपने पास अभी के लिए भोजन को है? बोला है। बोला हमारे पास अभी के लिए है, रात का भगवान व्यवस्था करेगा, आप किसी और को दे दो। ये ब्राह्मण की पहचान है। संग्रह करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये पहला, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण भगवान के ऊपर विश्वास करता था। और प्रभुपाद जी इतने बड़े मंदिर बनाए, लेकिन कभी भी जेब में 10 रुपये होते थे तो 10 लाख का सौदा करते थे। 10 रुपये एडवांस ले लो, बाकी पैसे बाद में देंगे। वो कहते पैसे अगर पहले और दूसरे का पैसा इकट्ठा करोगे तो झगड़ा होगा। प्रभुपाद ने नियम बनाया था, अक्यूमुलेटेड मनी काज ऑलवेज क्वारल। खड़ा हुआ पानी डुबाएगा, इकट्ठा हुआ धन झगड़ा कराएगा। ये कहावत है, चलते हुए पानी में आदमी डूबेगा नहीं, किनारे के ऊपर फेंक देगा। खड़े हुए पानी में आदमी डूब जाएगा, और गंदा भी होता है पानी, खड़ा चलता हुआ पानी खराब गंदा नहीं होता है। और इकट्ठा हुआ एक जगह धन इकट्ठा हो गया, हिला नहीं, तो वो डुबाएगा आदमी को और गंदा भी करेगा। चलता रहे, यहां से आए वहां से जाए तो ठीक है, आया राम गया राम तो चलेगा, लेकिन खड़ा राम खराब है। तो ब्राह्मण संतोषी, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो आज, वो तो पुरानी सपने की कथा सुनी है। ब्रह्मचारी अपने गुरुजी के साथ पहली बार भिक्षा लेने गया, और भिक्षा के समय दरवाजे के ऊपर कहते थे भिक्षाम धेई माँ, हे माता भिक्षा दो। तो नौजवान लड़की अंदर से भिक्षा देने के लिए आई, उसको देख के भिक्षा लेने के बाद शिष्य पूछता है गुरु से, गुरुजी ये लड़की को छाती में कौन सा बीमारी है कि ऐसे मोटी क्यों छाती है? उसने कभी लड़की को देखा नहीं था। गुरुजी ने कहा बेटा ये मां बनेगी ना, भगवान ने ये दूध की थैलियां बना के रखी हैं, बच्चा जन्म लेगा तो उसको दूध पीने को मिलेगा। बोला गुरुजी फिर हम क्यों मांगने के लिए जाते हैं? बच्चे पैदा होने से पहले भगवान दूध की व्यवस्था करता है, तो क्या हमको रोटी नहीं खिलाएगा क्या? उसने की दृष्टिकोण में उसने देखा कि बच्चे के जन्म से पहले भगवान ने उसके दूध की व्यवस्था कर ली है, तो क्या हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं करता है क्या? हाथी को आज भी एक मण जंगल में मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई हाथी भूखा रहता है क्या? कहीं नौकरी करता है हाथी क्या? ये जो नौकरी करता है इसको पूरा नहीं मिलता है, बहुत दुखी होता है, ऊपर आदमी बिठा होता है, रुपया कटा करता रहता है, भिखारी बना हुआ है। लेकिन हाथी को भगवान एक मण रोज देता है, और एक चींटी को एक कंक का एक दाना देता है, रोज दे रहा है, लेकिन आदमी के लिए दो रोटी नहीं मिलेगी क्या? ये विश्वास नहीं है, और ब्राह्मण को विश्वास होता है। तो ब्राह्मण धन इकट्ठा नहीं करता है, और उसको करना भी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण की पहचान है। ब्राह्मण अथवा साधु ब्रह्मचारी, चेतना महाप्रभु की लीला में एक ब्रह्मचारी का वर्णन आता है, क्या तीन भाइयों में एक से है मेरे ख्याल में, घोष, वासु घोष, इनमें से एक नाम अभी याद आएगा तो बताएंगे किसी को। चेतना महाप्रभु कहीं से घूमते भ्रमण करते गए, तो कुछ भोजन किया, बोला हरीड़ ले आओ, हरी तक्की बोलते हैं हरीड़ को, कि भाई खाने के बाद कुछ मुख वास और उसके लिए। तो एक पूरा 2-3 घंटे गांव में घूमने के बाद टिकिया लाया, और महाप्रभु ने टिक्की खा ली। दूसरे दिन का क्या नाम याद आता है किसी को? हा, वासुदेव ऐसे कुछ, और टिक्किया जाते एकदम लग टिक्किया दे दी। बोला ये कल तो तुम्हारे को 1 घंटा लगा ढूंढने में, आज इतनी जल्दी कैसे लाया? बोला कल मैं 2 लाया था। बोला तुम पक्का गृहस्थी बनेगा, तुम साधु नहीं बन सकता। महाप्रभु कहते जो कठा करके रखता है, ये गृहस्थी को कठा करने का अधिकार है, लेकिन तुम ब्रह्मचारी कठा क्यों किया? तुम गृहस्थी बनोगा। रोने लगा गृहस्थी। बोला फिर महाप्रभु कहते तुम गृहस्थी बनेगा, फिर भी मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, लेकिन कठा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, साधु नहीं रह सकता। कठा किया तो ग्रस्त बनेगा, फिर तो घर बनाना पड़ेगा है? तो साधु की, तो ब्राह्मण जो है उस कैटेगरी में आता है। फिर जबकि क्षत्रियों के पास इतना धन रहता है, क्षत्रियों के पास बहुत ज्यादा धन होता है, क्षत्रिय मतलब राजा, राजा असंतोषी, उसके बाद बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की इच्छा होनी चाहिए। क्यों, काय के लिए लिखा है। वैदिक संस्कृति में क्षत्रियों के पास धन रहता था कि वे यज्ञ तथा अन्य उत्तम कार्य कर सके। वो धन से क्या करते थे, भगवान की पूजा अर्चना। यज्ञ मतलब विष्णु की पूजा, यज्ञ विष्णु के लिए आता है, यज्ञ का अर्थ विष्णु। और उत्तम कार्य, उत्तम कार्य, उत्तम कार्य, पुराने जमाने में उत्तम कार्य क्या था, गुरुकुल चलाते थे। गुरुकुल में 10,000 से अधिक शिष्य होते थे और उस गुरु को कुलपति कहते थे, और उन सबके भोजन की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था, उनके किताबों की व्यवस्था राजा करता था। स्टूडेंट से कभी फी नहीं ली जाती थी वैदिक संस्कृति की शिक्षा में। ये क्षत्रियों का दायित्व था। क्षत्रिय राजा वो है जो सबसे यज्ञ करे, और यज्ञ करने के लिए तो ब्राह्मण चाहिए, तो शिक्षा देने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। तो उस गुरुकुल के अंदर किसी भी स्टूडेंट से फी नहीं ली जाती थी, भोजन पुस्तक कपड़े गुरु को देने थे, इसलिए उसको गुरु का कुल कहते थे। कुल का मतलब खानदान, परिवार। माता पिता को कोई चिंता नहीं थी, बच्चे को गुरु के पास छोड़ के आए फिर वो निश्चिंत होकर बैठ जाओ। वो गुरु जी उनकी सारे पढ़ने की, लिखाने की, पढ़ाई की, खाने की, किताबों की व्यवस्था करता था। तो ये उनको कौन देता था, राजा महाराजा, ये सब राजा महाराजा चलाते थे। जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल जैसे चल रहे, गवर्नमेंट चला रही है, ये इसका एक नमूना है। लेकिन ऐसे उसमें गुरुजन भी कोई तनख्वाह नहीं लेते थे। तनख्वाह लेने का मतलब है वो आदमी शूदर हो गया। तनख्वाह लेना मतलब शूदर हो गया, ये डेफिनेशन। पेड चेक मीन्स शूदर। ब्राह्मण दान से अपना जीवन का निर्वाह करता था, क्षत्रिय टैक्स लेता था और वेश बिजनेस से पैसा कमाता था। नौकरी कौन करता था, शूदर। और अब सभी नौकरी करने के पीछे भागे हुए, और अपने आप को शूदर घोषित करने में बहुत बड़ा उनको आंदोलन चलाना पड़ता है कि हमको शूदर बनाओ, क्योंकि हम ऊंचे ऊंच कोटि में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसके हम लायक नहीं रह गए। सच कह रहे हैं, बाकी उसके लायक नहीं है, नाम से हो गया, नाम उसका बहुत ऊंची कोटि की जाति का है, लेकिन अपने आप को शूदर बनाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा है। देखो ना, ये आधुनिक संस्कृति की पहचान है कि नहीं है। अब तीसरा वर्ण, वैश भी कृषि, गौपालन तथा व्यापार से ईमानदारी के साथ धन कमाता था। ये वैदिक संस्कृति की बात है। वैश की कमाई का रास्ता क्या था, पशुपालन, गौरक्षा, कृषि, जमींदारी, व्यापार, और चौथा भी वेदों में है, बैंकिंग, इंटरेस्ट। ये चौथा भी वैश्य के कर्म में आता है। इसके द्वारा ईमानदारी से वो अपना पैसा कमाता था। अब चौथी लाइन सुनी, किंतु यदि, अच्छा उसके बाद, किंतु यदि शूदर को धन प्राप्त हो जाता है तो वो उसका उपव्यय करता है या फिर संचय करता है, जो उसके काम नहीं आता। अब धन जब किसी ब्राह्मण के पास तो होता ही नहीं, क्षत्रिय के पास होगा तो यज्ञ आदि और गुरुकुल आदि और ऐसे धर्मशाला ऐसा काम करेगा, सेतु बना दिया नदी के ऊपर तो सब आदमी पार हो गए एक दूसरे, ये काम करते थे क्षत्रिय। वैश्य अपना ईमानदारी से कमाता है और वो वैश्य सबको दान, वैश्य ब्राह्मण को दान देता है, क्षत्रिय को टैक्स देता है, मजदूर को तनख्वाह देता है, ये वैश्य देता है, बाकी तो कोई कमाता नहीं। अब शूदर के पास पैसा अगर आ गया तो क्या करेगा, पहले तो बेकार का खर्चा करेगा, दिखावे का खर्चा करेगा। पुराने जमाने में करोड़पति लोग होते थे ना, फटे कपड़े पहनते थे। मालूम है पुराने जमाने के जो सेठ बड़े होते थे, कपड़ा फटा सा पहनते थे, वो दिखावा कभी नहीं करते थे पैसे का। जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, वो मूंछ के ऊपर तेल लगा के और सफेद कपड़ा सफेद पहन के घूमता था दिखावा करने के लिए। कोई भी धनी आदमी दिखावा नहीं करता था पहले जमाने में, वो पैदल भी जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं थी। तो शूदर के पास पैसा आता है तो वो बहुत अढ़ंबर का खर्चा करता है पहले, और ज्यादा और हो गया तो कथा करता है, कथा करता है, शब्द लिखा है, वो फिर कथा करता है। काम उसको संचित करता है जो उसके काम नहीं आता है, ज्यादा पैसा होगा तो कथा करता है। क्योंकि इस युग में सुपात्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य नहीं है, अत प्राय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कलव संभव सर्व शूद्र। अब आज के दिन में लोग क्या करते हैं, पैसे की निमाइश, पैसे का बेकार खर्च, पैसे का दिखावा, और फिर पैसे को इकट्ठा करते हैं जो काम नहीं आता है। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, फलस्वरूप शूद्र मानसिकता के आधुनिक अभ्यता को भारी क्षति पहुंच रही है। ये शब्द अंग्रेजी में बड़ा सुंदर लिखा था, ऐसे शूद्र प्रकार के लोगों के पास धन आने के कारण क्या हो रहा है, वो क्या रहे, शूद्र मेंटेलिटी जिनके, शूद्र मानसिकता जिनके, काजिंग ग्रेट हार्म टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक जो सभ्यता है उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है, बहुत ज्यादा ग्रेट हार्म। ग्रेट हार्म का मतलब बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंच रहा है सभ्यता को, किसके कारण, कि धन शूद्र के पास है, उसे उसको यह भी पता नहीं है, शूद्र यह नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लिए धन का किस प्रकार उपयोग किया जाए। भाई धन है तो धन किसके पास ज्यादा होता है, क्षत्रिय के पास, उसको तो पता है ना कि मुझे इसका क्या करना है, बड़े बड़े यज्ञ कराएगा अथवा ऐसे धार्मिक काम करेगा, लेकिन शूद्र को यह पता नहीं है मैं कैसे धन का क्या करूं, तो क्या करेगा वो, ज्यादा जहां से पैसा ज्यादा, क्या काम क्या करेगा, पता नहीं है क्या करना है, तो क्या करेगा वो, फिर उपयोग में लाने का उसको पता भी नहीं है, उसको यह भी पता नहीं है, धन को लक्ष्मी भी कहते हैं और लक्ष्मी जी सदैव नारायण की सेवा में संलग्न रहती है, रहने वाली है। अब दूसरा लाइन आ गई कि जिसके पास धन है उस धन को लक्ष्मी मानते हैं। अभी भी वैदिक संस्कृति के लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, धन उस धन को निकाल के लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं ना, तो धन को लक्ष्मी ही मानते हैं अभी तक। और वैसे हमारे स्कान के अंदर तो कहते ही लक्ष्मी को, लक्ष्मी धन को लक्ष्मी ही कहते हैं। क्यों लक्ष्मी कहते हैं, कि जो कुछ है वो कृष्ण सेवा के लिए है, तो कृष्ण सेवा के लिए धन है वो लक्ष्मी है, कृष्ण नारायण है तो लक्ष्मी है, तो ये लक्ष्मी शब्द का उनको परिभाषा ही है कि धन लक्ष्मी है, लेकिन शूद्र को ये पता नहीं है कि धन लक्ष्मी है। बहुत महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है जब नारायण के साथ आती है, और साधारण लक्ष्मी उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, मालूम है, लक्ष्मी के दो वाहन हैं। अकेली लक्ष्मी को चाहेगा कोई तो उल्लू के ऊपर चढ़ के आएगी और उसको भी उल्लू का पट्टा बनाएगी, कैसे, जिनको रात समझेगा अल्टीमेटर हो जाएगी, और नारायण के साथ लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर चढ़ के आएगी। गरुड़ का अर्थ होता है वेद, इसका मतलब साधु संतों के संग में अगर किसी के पास धन है तो उसको मालूम है कि ये नारायण की सेवा के लिए है। वो लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर आती है जो नारायण के संग में आती है, और जो अकेली लक्ष्मी आती है वो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है। तो धन हमेशा नारायण के साथ रखना चाहिए, अकेला नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी इसका पुराना उदाहरण दिया करते थे, रावण सीता को ले गया, राम जी को छोड़ के गया, तो सोने की लंका भी समाप्त हो गई। तो वो शूद्र ये नहीं जानता है कि लक्ष्मी है धन, और उसको नारायण की सेवा में कैसा लगाना चाहिए, उसको ये जानकारी नहीं है। अब उसके कारण क्या होगा, प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वो धन का उपयोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रसार में लगाए। यदि वो धन का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करता और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है तो अवैध संपत्ति के कारण उसे गर्व हो जाता है। अब प्रभुपाद जी सुझाव दे रहे हैं, डांट नहीं रहे, केवल डांटना नहीं है, किसी को कहे तुम बीमार हो ये तो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारा इलाज क्या है ये भी बताना चाहिए ना। ऐसे नारद जी ने नल कुबेर और मणि गुरु को देखा कि इनको धन के मद का अंध हो गया है, तो ये बीमारी तो है, अंधे हो गए हैं, नशे में हैं, लेकिन इलाज क्या है इसका? तो इलाज भी दिया है, दरिद्र अंजनम, अंजन कहते हैं मरहम को, इसका मरहम क्या है? बोला इनका धन सब छिन जाएगा, तो जब ये दरिद्र गरीब हो जाएंगे तब इनको पता लगेगा कि गरीब को क्या कष्ट होता है। जिसको कांटा लगता है उसको कांटे के दर्द का पता होता है। और फिर आगे नारद जी कहते हैं साधु लोग गरीबों को पास तो अपने आप चले जाते हैं, और उनको सत्संग करने के से उनकी गरीबी के अंदर जो एक लालसा होती है धन की, वो भी आस्ते आस्ते शांत हो जाती। तो ऐसे यहां जो ये लाइन लिखी है कि अगर धन का उपयोग सत्कर्म में नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो धन आदमी को अहंकारी, घमंडी और धन मद अंध बना देगा। और जब ये धन मद अंध हो जाएगा तो फिर वो सुखी नहीं हो सकता। इस श्लोक के अंदर जो शब्द है ना कि वो सुखी नहीं होता है, धनी आदमी सुखी नहीं है, ये सच है कि झूठ है? इसके ऊपर थोड़ा विचार करके देखो, सुख की क्या पहचान है? सुखी किसको कहेंगे? जिसको अच्छी भूख लगे और समय के ऊपर जिसको अच्छी नींद आ जाए वो सुखी है इस दुनिया में। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं? भूख लगे अच्छी तरह से और नींद बहुत अच्छी आ जाए कहीं भी टाइम पे, वो सुखी आदमी इस दुनिया में। भूख लगे और नींद आए ये सुखी है, और क्या चाहिए? हाँ, और क्या तीसरा क्या? क्या अच्छा ये भी, मतलब प्रेशर बनाने के लिए चाय नहीं चाहिए। अब कितने लोग रोड के ऊपर सोते हुए, साइकिल रिक्शे के ऊपर लोग सोते हुए देखे? बहुत से होते हैं कि नहीं होते? नींद आती है कि नहीं आती है? और कहीं भी सूखी रोटी खा के पेट भर लेते हैं कि नहीं लेते? हमारे पास कितना सा धन है, सब कुछ है, लेकिन पेट में खाने के लिए भूख नहीं है और पाचन शक्ति कम हो गई है और रात को नींद आती नहीं है, इसका मतलब हम सुखी तो नहीं है? दुख क्यों है धन में? ये क्यों नहीं होता है? भूख क्यों नहीं लगती है? नींद क्यों नहीं आती है? उसका भी कारण इस श्लोक में बताया है कि उसको चिंता रहती है कि ये धन जो मैंने कमाया है कहीं से कोई ले न जाए। फिर उसकी रखवाली करनी है। बोला कैसे रखवाली करनी है? लिखा क्या है इधर? भूत की तरह धन की रखवाली करता है। श्लोक में शब्द है भूत की तरह, जैसे भूत धन की रखवाली करता है ऐसे वो धन की रखवाली करता है। और फिर इसको बढ़ाना कैसे है उसके लिए चिंता होगी तो नींद आएगी नहीं। कहीं से दिया हुआ है वापस नहीं आएगा तो भूख नहीं लगेगी। तो ये सब जो कारण है दुख के, वो तीन चीजों के कारण यहां लिखा है, धन की कमाई, फिर उसका संरक्षण और उसके जाने का डर। ये आदमी को हमेशा दुखी रखते हैं, वो सुखी नहीं हो सकता है। तो सुख का साधन धन है ये मानना ठीक नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, पहले ये मानना समझ में आ जाना चाहिए। सुखी कौन है? जिस नाम आधार। ये संत का जो एक शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है कि दुनिया में सुख कौन है? सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। सुखी वो है केवल जिसने भगवान का नाम का शरण लिया। धन सुख का कारण नहीं है, और धन इस श्लोक के अंतर्गत दुख का कारण है। इस दुनिया में भी और उसके बाद मरने के बाद नरक है, वो तो दुख है ही। तो धन का सदुपयोग अगर करता है तो इस दुनिया में सुखी है। धन आ जाए तो क्षत्रिय की तरह काम कर ले, वैश्य की तरह, भाई गौ रक्षा हो गई तो अपने आप में सेवा हो गई ना, कृषि हो गई तो सेवा हो गई, अन्न उत्पादन होगा तो लोग खाएंगे ना, तो लोगों तो पूरी सबकी सेवा हो गई ना, वाणिज्य हो गया तो हमको, हम भाई मैं नहीं बना सकता हूं कोई चीज, कोई व्यापार करके देता है तब तो खा रहा हूं ना, तो ये तो सेवा में आ गया तीनों कार्य। तो अब इसका क्या होगा? उसे घमंड जरूर होगा, पर प्रभुपाद जी भगवत गीता से कहते हैं, असल में धन का आदमी भोग करना चाहता है ना, लेकिन हम तो भोग करने वाले हैं ही नहीं। धन का भोग करने का अधिकार किसका है? जो लक्ष्मीपति है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये श्लोक प्रभुपाद ने यहां लिखा है कि धन किसका है। ये धन वास्तव में श्री कृष्ण का है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है 5:29 में उन्होंने कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त यज्ञों एवं तपों का वास्तविक भोक्ता मैं हूं और मैं समस्त लोकों का स्वामी हूं भी हूं। अतः सब कुछ श्री कृष्ण है और कुछ भी किसी का नहीं है। प्रभुपाद ने लकीर लगा दी, सब कुछ कृष्ण का है, कुछ भी किसी का नहीं। ये झूठ है सच्चे? कोई कुछ लाया था, कुछ कोई ले जाएगा? जब कुछ लाए नहीं थे, कुछ ले नहीं जाओगे, इसका मतलब आपका नहीं है ना। बीच में आपने मान के रखा है कि मेरा है। सिर्फ मानसिकता ऐसी हमारी हो गई है, अभी ये चीज यहां पड़ी है और कोई रखता है तो मैं मान लेता हूं मेरी है, जबकि ये किसी की नहीं है। हम एक दूसरे के काम के लिए उदाहरण देते हैं, लेकिन ये उदाहरण ऐसा है, आपकी जेब में पैसा पड़ा है ना, आप उसको अपना मानते हो ना। आपकी जेब में अगर 100 का नोट है तो उसको आप अपना मानते हो ना। उसके ऊपर क्या लिखा है देखो तो, क्या लिखा है? अब भारत संस्कार की, भारत सरकार की रिजर्व बैंक की संपत्ति लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, तो आपका नहीं है ना, उसका मालिक कोई और है कि नहीं है? ये रुपये के नोट आपको बताता है कि नहीं? नोट ये बताता है कि वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो किसकी संपत्ति है? क्या लिखा है देखो, इतना तो बुद्धि सरकार को भी है, लिखा है कि भारत रिजर्व बैंक की संपत्ति है, आपकी संपत्ति नहीं है। तो ऐसे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा है, मैंने आपको दिया है कि इसका आप सदुपयोग करो। जैसे मानो बैंक लोन देती है कि आप अपना कारोबार करो, ऐसे भगवान ने हमको ये लोन दिया है तो उसको वापस पे भी करना है ना। कि भाई उधार लोगे तो पे करोगे कि नहीं करोगे बैंक को? तो रिजर्व बैंक से आपने उधार लिया है तो उसको वापस देनी चाहिए ना। तो साधारण संसार में ब्याज तो देना चाहिए ना, मूल तो दे ही नहीं सकते हो। कौन, मैं एक दिन सुना था कोई महात्मा कह रहा था, साधु संत जो है ना वो मूल देते हैं, इस जन्म में आए हैं तो वो मूल चुका रहे हैं ताकि वापस दुनिया में ना आना पड़े, उधार खत्म हो जाए। लेकिन साधारण संसारी आदमी को कम से कम ब्याज तो देना चाहिए ना भाई, जिसका लिया है, जिससे हमने लोन लिया है उसका ब्याज तो देना चाहिए ना कम से कम। मूल नहीं दे सकते हो, ब्याज देने का मतलब है धार्मिक कार्य के अंदर कुछ न कुछ समय समय के ऊपर लगाना चाहिए, जिसने लिया है उसको देना चाहिए, ये हुआ क्या देना? ब्याज देना। लेकिन जो साधु बन गए हैं वो मूल देते हैं, मूल देते हैं कि मतलब सब कुछ भगवान का मान के उसको वापस दे देते हैं कि जीवन में ये जिसका है उसको दे दिया जाए। तो सब कुछ किसका है, लक्ष्मीपति कौन है? भगवान है, ये बात साफ समझ में आनी चाहिए। यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक धन हो, अब ये बहुत बड़ा वेग टर्म है, आवश्यकता से अधिक, तो मेरी आवश्यकता क्या है? हाँ, आवश्यकता क्या है? एक आदमी की आवश्यकता क्या है? कौन हमको एक बार बता रहा था, एक आदमी सोचे कि मेरे को मानो 70-80 साल जीना है तो उस जीने के लिए कितना खर्चा चाहिए, मेरा परिवार कितना, उसका गिन लो, सबके बाईपास का पैसा भी गिन लो 2.5-3 लाख रुपया करके। नहीं, ये भी गिन लो, फिर देखो कि हमारी आवश्यकता इस जीवन में जीने तक इतनी है, और हमारा दायित्व तो मानो कि ये छोटे बच्चे शादी ये वो सब गिन के रखो कि इतनी आवश्यकता है, चलो उससे ज्यादा कितना है, कहीं तो लिमिट लगाओ ना, कहीं तो फुल स्टॉप दो ना कि आवश्यकता हमारी क्या है, कोई तो बताओ कि यहां हमारी आवश्यकता है। लेकिन किसी को फुल स्टॉप देना आता ही नहीं है, आवश्यकता कितनी है हमारी इसका किसी को पता नहीं है। वो तो कहते हैं ये तो लिखा है वेदों का मंत्र और भागवत में लिए, एक व्यक्ति को सारी दुनिया का धन, सारी दुनिया के पशु, सारी दुनिया के भोग की सारी वस्तुएं, नारी स्त्री सब कुछ दी जाए तब भी असंतुष्ट रहेगा। यह वेद का वाक्य है कि सारी दुनिया की संपत्ति एक आदमी को दी जाए, सारी दुनिया का जो चीजें उसको चाहिए दी जाए, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो। इसका मतलब ये श्लोक के अंदर ये जो लाइन है, हमारी आवश्यकता क्या है, ये तो आवश्यकता तो अपनी फुल स्टॉप आप लगाओ अपनी तरफ से कम जो चाहे वो लगाओ, लेकिन कहीं तो लगाओ ना। उससे ज्यादा जो कुछ है, लोग बड़े होशियार हैं, तो कई बार हमने बताया होगा कभी आपको, पैसा दान लेने जाते थे, दो तीन लोग कुछ वापस लौटते थे, अरे किसके लिए दान लेते, भगवान के लिए, तो बोले भगवान को कैसे देते हो, तो पहला कहता है मैं क्या करता हूं, धरती के ऊपर एक गोला बनाता हूं, फिर ऊपर से नीचे फेंकता हूं, कहता हूं गोले में जाएगा वो भगवान का है, बाहर गिरेगा वो मेरी सेवा का है। अरे भैया तुम्हारा गोला कितना बनाता है, बोला मेरी अंगूठी है ना वो नीचे रख देता हूं। दूसरे को बोला तुम क्या करते हो, मैं ऐसे जिसके बिल्कुल उल्टा करता हूं, मैं कहता हूं गोले में गिरे वो मेरा, बाहर गिरे वो भगवान का, क्यों मैं छोटा हूं भगवान बड़ा है, तुम गोला क्या बनाते हो, बोला मेरे घर के चारों ओर लकीर लगा देता हूं, फिर ऊपर धन को फेंकता हूं जहां गिरे। तीसरे ने कहा तुम दोनों ठीक नहीं करते हो, बोला तुम क्या करते हो, बोला मैं ऐसे धन को ऊपर फेंकता हूं, बोला भगवान तुम्हें चाहिए तुम्हारा दे दो बाकी सब मेरा है। तो लोगों ने अपनी आवश्यकता के बड़े नए नमूने बनाए थे और फिर ये कह रहे भगवान को जरूरत क्या है, भगवान को क्या जरूरत है, वो तो भाई आत्मा राम है ना। तिरुपति में कोई भगवान को प्रार्थना करने गया कि मेरे को जितना मिलेगा आधा आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे को आवश्यकता है कम से कम 1,00,000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन जितना मिला मैं आपको आधा दूंगा। काम से उसको 50,000 मिले, अब आधा देने की जब विचार आया तब बोला भगवान आपने अपना आधा पहले काट के फिर मेरे को दिया। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, आपने आधा काट ही लिया पहले। लोग बहुत होशियार है कि आवश्यकता को ऐसा शब्द है उसमें कोई कहां भी कुछ भी चेंज कर सकता है, इसलिए आप आपको लिमिट दिए क्या आपकी आवश्यकता है, लेकिन कहीं तो एंड करो भाई, कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। आपकी उम्र 100 साल गिनो, उसमें कितना चाहिए वो सब लगाओ, लेकिन कहीं तो एंड करो भाई। और उससे ज्यादा है किसी के पास तो क्या करना चाहिए, तो उसको श्री कृष्ण के लिए खर्च करना चाहिए। मनुष्य यदि ऐसा नहीं करता तो अपनी झूठी संपत्ति के कारण, झूठी संपत्ति को क्यों कहते, झूठी संपत्ति क्यों शब्द लिखा है, झूठी का मतलब हम मान के बैठे हमारी हमारी है तो नहीं, ये धन काचा, ये कच्चा धन, कच्चे धन का मतलब कच्चा भोजन किसको कहते हैं जो दूसरे जन नहीं रहे, दाल चावल को कच्चा भोजन कहते हैं, लड्डू को पक्का भोजन कहते हैं, तो कच्चा और पक्का शब्द होता है, धन में भी कच्चा और पक्का शब्द है। ये धन काचा, संतों की वाणी का है कि ये धन कच्चा है जो संसार का धन है, पक्का धन क्या है, राम नाम का धन पक्का धन है, वो हमारा है और ये भगवान का है। तो ये जो झूठी मान्यता के साथ जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, मनुष्य यदि ऐसा नहीं करता तो वो अपनी झूठी संपत्ति के कारण अहंकारी बनेगा, गर्व से फूल उठता है, अतः अगले जन्म में उसे दंडित होना पड़ता है। प्रभुपाद जी ये नहीं कहते हैं कि वहां उसके शरीर को सिया जाएगा, क्योंकि जो इलाज बताता है वो समझता है कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं लोग इससे सुधर जाएंगे, इसलिए इनको दर्जी की तरह शरीर को सिलाई नहीं की जाएगी। अब लोगों ने कहते हैं क्या उधर सिएंगे, यहां डॉक्टर से सिलाई करा देते हैं, हमारा तो यही काम चल रहा है, तो यही तो नरक में बैठे, आज सबकी सिलाई होती है, डॉक्टर सबको जैसे सीता है खाटता है और सीता है, हम बहुत सिलाई किया हमने, तो ये सिलाई तो यही हो रही होगी, तो हमको क्या फर्क पड़ेगा यहाँ, लेकिन वहां एनेस्थीसिया के बगैर सिलाई होगी, वहां बेहोश करके नहीं, बगैर बेहोशी के सिलाई करेगी। तब कुछ समझ में आएगा कि वहां की सिलाई बगैर बेहोशी से है, और सुई से नहीं है, बोरी सिले वाले से, सिलने वाले सुए से होती है। तो आज के श्लोक से हमको सीखने को यह मिलता है कि इस दुनिया में धन की आवश्यकता सबको है, अपने आवश्यकता के अनुसार धन का उपयोग करें और आवश्यकता से अधिक भगवत सेवा में लगाना चाहिए। अब हरेक की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, राजा की आवश्यकता अलग है और एक गरीब की आवश्यकता अलग है, लेकिन गरीब के पास एक रुपया है तो एक पैसा दान में दे दे, और राजा के पास एक करोड़ है तो एक लाख दे दे, लेकिन भगवान के लिए दोनों समान है। तो जिसकी जो आवश्यकता है उससे अधिक है उसको कृष्ण भावना अमृत कार्य में अथवा भगवत कार्य में लगाना चाहिए, यज्ञ आदि सेवा। यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ ही कलयुग का यज्ञ है, जहां यज्ञ शब्द प्रभुपाद लिखा है वो संकीर्तन यज्ञ है, और जहां अन्य उत्तम कार्य वो है भगवान के ग्रंथों का वितरण। अन्य उत्तम कार्य ये है कि लोगों को भगवान के ग्रंथ भगवत गीता भागवत रामायण आदि पहुंचाए जाए, ये उत्तम दूसरा कार्य है जिससे लोगों को विद्या प्राप्त हो। तो गुरुकुल में विद्या मिलती थी, अब गुरुकुल नहीं है तो कम से कम पुस्तक लोगों के घर तक पहुंचाए, तो ये भी वही कार्य करेंगे। इसमें लिखने वाला प्रभुपाद जी गुरु बन के उनको शिक्षा देंगे उनके घर में बैठे हुए। तो इस तरीके से इस कार्य के अंदर सेवा में धन को लगाना चाहिए। तो इस श्लोक से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, नरक में जाने के भय से नहीं, लेकिन संस्कार हमारे कैसे उचित हों, इसलिए मंदिर बने हुए हैं, धर्मशालाएं बने हुए हैं, लोगों ने अपने धन का इन कामों में लगाया है, चारों ओर पियाऊ बने हुए हैं। ये आप देखते हैं भारत संस्कृति, और किसी दुनिया के बाहर के देश में आपको ऐसी चीजें बनी हुई मिले नहीं मिलेंगी। तो इन लोगों ने अपने धन के अधिक उपयोग, बहुत से ऐसे लोग हैं अपने लिख के जाते हैं, जमीन जायदाद पड़ी सब देखे जाते हैं, आखिर में ये सेवा में लगा देना, ट्रस्ट ने बनी हुई है, कैसे बनी है ये ट्रस्ट, लोगों ने बनाई है सरप्लस पैसे से ट्रस्ट बनाई है ना, जिन्होंने भी ट्रस्ट बनाई है जो ज्यादा पैसा था उसी से ट्रस्ट बनाई है ना, वो ट्रस्ट ने सेवा का कार्य कर ही रही है। लेकिन थोड़ा सा और बुद्धिमानी से सोचें कि लोगों को जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए कृष्ण भावना भावित कार्यों में भी धन का लगाना। अभी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि मानो के ऐसे धर्माऊ कार्य के लिए किसी धन मांगोगे तो दे देंगे लाखों के हिसाब से, जैसे अस्पताल आदि के लिए, लेकिन हम कहें कि मंदिर बनाएंगे तो लोगों को देने का इतना उत्साह नहीं होता है, कम लोग उसमें इतना देने की इच्छा रखते हैं। क्यों? कि उनको समझ में नहीं आता है, बेचारों को पैसा तो है देना भी चाहता है, लेकिन वो उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये मंदिर गुरुकुल का काम कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षित लोग। किसी ने एक बार पूछा था मेरे ख्याल में हमारे किसी महात्मा से कि आप लोग धर्मशालाएं मंदिर अस्पताल और ऐसे क्यों नहीं खोलते आप, मंदिर क्यों खोलते हैं? बोला जो लोग ये कार्य करते हैं उनको शिक्षा हम मंदिर में देते हैं, तब आपकी स्कूल और कॉलेज और आपके अस्पताल तब खुलती है जब हम मंदिर में उनको ये शिक्षा देती है कि दान करना चाहिए। तो जो ये दो लोग दान करते हैं उनको शिक्षा देने के लिए ये जगह है। तो जो काम आप करना चाहते हो वो शिक्षक कहां से आएंगे, उसको सिखाने के लिए ये स्थान है। तो इसलिए हमारे मंदिर जो है वो एजुकेशनल सेंटर है प्रभुपाद ने कहा। और फिर एक बार किस कहीं प्रभुपाद ने बोला आप अस्पताल क्यों नहीं बनाते, मंदिर क्यों बना दिया? उसने बोला मंदिर कहां बना रहा हूं, ये तो अस्पताल है, पर ये मंदिर है बोलना ये अस्पताल है, ये भौतिक रोगों को उसकी चिकित्सा का अस्पताल है। हमारे यहाँ भक्त डॉक्टर है आध्यात्मिक, सबसे लोग भौतिक रोग से पीड़ित लोग है, ये हमारे मंदिर अस्पताल है, हमारे मंदिर अस्पताल भी है और हमारे मंदिर गुरुकुल भी है, स्कूल भी है। तो ये दोनों कार्य करते हैं। तो कैसे भी ये संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक धन पहले तो कमाने की जरूरत नहीं, अधिक प्रयास मत करो, लेकिन अगर है तो उसको सत्कर्म में लगा दो, नहीं तो वो आपको क्या करेगा, दुखी कर देगा। आप समझते हो सुखी करेगा लेकिन दुखी कर देगा, और सबसे बड़ा दुख है घमंडी बनना, अहंकारी बनना। और घमंडी और अहंकारी आदमी, देखो शास्त्र में कामी क्रोधी लोभी इन सब का उधार होते हुए सुना जाएगा, अहंकारी कभी नहीं तरा है। बड़े बड़े अहंकारी नरक पड़े, अहंकारी का उद्धार होना संभव नहीं है, और धन अहंकार आदमी को करता है, इसलिए उसके लिए कोई रास्ता नहीं। तो यहां 28 नरक पूरे हो गए, फिर असंख्य नरक और भी हैं, लेकिन हमारे को उस तरफ जाना ही नहीं है, तो उस रास्ते की पूछने की जरूरत नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए सरल साधन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवत नाम लेंगे तो भगवान अंदर से प्रेरणा देगा कि मेरी